ओम शांति। जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय परिवर्तन से संबंधित है। परिवर्तन का पथ अकेला राही, परिवर्तन का पथ अकेला राही, ये आज का विषय का टॉपिक है, विषय है, टॉपिक है। इस्लाम में एक संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय। उस सूफी संप्रदाय में एक सूफी संत हुआ था कभी, जिसका नाम था बायजीद। उस बायजीद ने अपने आत्मकथा जीवन कहानी में एक बात लिखी है। उसने लिखा है कि जब मैं बहुत छोटा था, मेरे अंदर ऐसा जुनून था, ऐसा जोश था, ऐसी शक्ति थी कि सोचता था सारे विश्व को परिवर्तन कर दूं, और प्रार्थना भी करता था, हे खुदा मुझे ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी दे कि जिससे मैं सारे विश्व को परिवर्तन कर दूं। वो लिखता है पर यह कार्य बहुत मुश्किल था, मैं कर नहीं पाया। या फिर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो पता चला यह कार्य असंभव है। फिर उसने लिखा, मैं जब युवा था तब मैं सोचता था कि संसार नहीं तो कम से कम अपने परिवार को तो परिवर्तन कर दूं, और फिर लग गया परिवार के लोगों को परिवर्तन करने में। पर धीरे धीरे पता चला यह कार्य भी बहुत मुश्किल है। फिर थोड़ा बूढ़ा हुआ पता चला कि परिवार तो को परिवर्तन करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और लिखता है कि मैं इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति को परिवर्तन कर सकता हूं, यदि मैंने उस व्यक्ति को परिवर्तन किया होता बचपन में ही तो आज मैं इतना पश्चाताप से नहीं भरता, और वो एक व्यक्ति कौन है, मैं स्वयं। जब तक हम स्वयं को परिवर्तन नहीं करते हम किसी को क्या परिवर्तन कर सकेंगे। विश्व तो बहुत दूर की बात, खंड तो बहुत दूर की बात, राष्ट्र तो बहुत दूर की बात, राज्य तो बहुत दूर की बात, समाज तो बहुत दूर की बात, परिवार भी नहीं। जो स्वयं को परिवर्तन कर देता है वो स्वतः ही दूसरों को भी परिवर्तन करने की प्रेरणा बन जाता है। बायजीद ने अपने जीवन कहानी में यह घटना लिखी है। कहता है कि मैं अब पश्चाताप से भरा हूं, क्यों मैं दूसरों को परिवर्तन करने में लगा रहा जीवन भर, क्यों नहीं मुझे यह समझ आई कि मुझे एक ही व्यक्ति को परिवर्तन करना है और वो मैं स्वयं हूं। परिवर्तन का ये मार्ग, परिवर्तन का यह पथ में हम अकेले हैं, यहां हमारा कोई साथी नहीं। अध्यात्म की ये जो डगर है यहां ना कोई पति है ना पत्नी, ना कोई मां ना कोई बाप, ना कोई बेटा ना तो कोई बेटी, वो तो इस जन्म के है। ये तो आत्मा की का सफर है, कई शरीरों को बदल बदल कर आत्मा इस शरीर में आई है, अपने गंतव्य की ओर उसे जाना है। तो किसी एक जन्म के मां बाप बहन भाई मित्र संबंधी कैसे उसके साथी हो सकते हैं? अगर कोई सोचे कि मेरा कोई साथी बन जाए और मेरे साथ चले और मेरा मददगार बन जाए इस संसार का कोई व्यक्ति, उसे दुखी होना होगा। उसकी आकांक्षा ही उसे दुख की ओर घसीटेगी। कौन साथी, किसका साथी, कैसा साथी? एकांगी पगडंडी है, अकेले चलना है इस पर। निरालंबक की यह स्थिति है, सारे अवलंबन छूटने हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, कौन तुम्हारा शिक्षक है, समय या बाप? कौन किसका इंतजार कर रहा है? तुम समय का इंतजार कर रहे हो या समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मास्टर रचता तुम हो, तुम्हारा शिक्षक बाप है या समय है? जो समय से पहले स्वयं को परिवर्तन कर देता है, जो स्वतः बिना किसी मदद के स्वयं को परिवर्तन कर देता है, वही इस दौड़ में आगे निकल जाता है। अगर कोई सोचे कि कोई साथी मिल जाए जो इस मार्ग में मेरे साथ चले, वैसे प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है कि कोई साथी हो, साथ साथ चले, एक से दो भला। परंतु क्या एक भूखे व्यक्ति की भूख दूसरा भूखा व्यक्ति मिटा सकता है? क्या एक प्यासे व्यक्ति की प्यास दूसरा प्यासा मिटा सकता है? क्या एक भटका हुआ राही दूसरे भटके हुए राही को मंजिल तक पहुंचा सकता है? क्या एक भिकमंगा दूसरे को समृद्ध बना सकता है? और ऐसे ही दो भिकमंगे अगर मिल जाए, समाज इसे विवाह कहता है। परंतु जो स्वयं ही रिक्त है, जो स्वयं ही भरपूर नहीं है, वो दूसरे को कैसे भरपूर संपन्न बना सकता है? वह ऐश्वर्य संपदा भी पाई नहीं है, तो क्या ऐसे दो व्यक्ति साथ आकर एक दूसरों के साथ ही बन सकते हैं? किसी जंगल में कभी एक शिकारी शिकार करते करते भटक गया, बिहड़ जंगल वो घना वन, वहां पर भटक गया। 3 दिन 3 रात कोई भी मनुष्य उसे दिखा नहीं, भटकता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, परंतु उस जंगल में उसकी पुकार कहीं खो गई। ढूंढता रहा, भटकता रहा, कोई भी मनुष्य नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई राह नहीं, यहां तक कि पशु भी नहीं, पक्षी भी नहीं, ऐसा वीरान वो जंगल। और 3 दिन के बाद देखता है दूर कहीं झाड़ के नीचे एक मनुष्य बैठा हुआ है। खुश हो जाता है उसे देखकर और भागकर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं इस जंगल में बिछड़ गया हूं, भटक गया हूं, तुम कौन हो? वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं भी यहां भटक गया हूं, तीन दिन से मैं भी भटका हुआ हूं, तीन दिन से मैंने भी कुछ खाया नहीं पिया ही, मैं भी इस जंगल में मनुष्य की तलाश में यहां से वहां और वहां से वहां भटक रहा हूं, तुम्हें मिलकर मुझे बहुत आनंद हुआ। क्या बताऊं कैसी खुशी मुझे हुई है। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर इतने खुश हो जाते हैं, परंतु पहले एक भटका था, अभी दो भटके हैं और फिर से दोनों भटक रहे हैं। अध्यात्म की ये टगर, जहां सभी अंधे हैं, एक अंधा दूसरे को अंधा कैसे राह दिखा सकता है। इंग्लिश में कहावत है, इफ अ ब्लाइंड मैन लीड्स द ब्लाइंड बोथ शैल फॉल इन द डिच। अगर एक अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को राह दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। ये जो परिवर्तन का पथ है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पाथ है, मार्ग है, इसमें हम सभी अकेले हैं। जिस जिसने जिस जिसका सहारा आधार अवलंबन लिया हुआ है, वो सभी सहारे वो सभी आधार गिरने हैं, और जब गिरेंगे तब बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि उनको आधार बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत सुंदर कविता है, आप सबने सुनी होगी, 1905 में जो उन्होंने लिखी थी, बंगाली में लिखी थी, एकला चालो रे, सुनिए, बहुत सुंदर कविता है, हमें बहुत पसंद है वो कविता। वैसे तो हिंदी बंगाली में लिखी है, परंतु उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उन्होंने ही किया है और कई जगह हिंदी ट्रांसलेशन भी है। वो कविता इस तरह से है, इफ दे आंसर नॉट टू थाई कॉल वॉक अलोन। यदि कोई तुम्हारा आवाज नहीं सुने, तुमने पुकारा और उन्होंने सुना नहीं, तो क्या करो, एकला चलो रे, वॉक अलोन। इफ दे आर अफ्रेड एंड कावर म्यूटली फेसिंग द वॉल, ओ यू अनफॉर्चुनेट, ओपन द माइंड एंड स्पीक आउट अलोन, वॉक अलोन। यदि वो सारे डर जाए, दूर चले जाए, दीवार की तरफ मुड़ जाए, ओ अभागे, ओ यू अनफॉर्चुनेट, अपना मन खोलो और अकेले बोलो, एकला चलो रे। इफ दे टर्न अवे एंड डेजर्ट यू वाइल क्रॉसिंग द वाइल्डरनेस, यदि वो तुम्हें उस वीरान जंगल में अकेला छोड़ दे, तो क्या करो, ट्रैम्पल द थॉर्न्स अंडर thy फीट एंड अलोंग द ब्लड लाइन ट्रैक वॉक अलोन। जो कांटे पथ पर होंगे, उन कांटों को रौंद कर उन उस रक्त रंजित भूमि पर अकेले चलो। आने दो खून, चुभने दो कांटे, पर अकेले चलो। इफ दे डू नॉट होल्ड अप द लाइट व्हेन द लाइट इज नाइट इज ट्रबल्ड विद स्टॉर्म, ओ यू अनफॉर्चुनेट, विद द थंडर flame of pain ignite thine own heart and let it burn alone. Yadi diya na jale aur ore abhage diye na jale, yadi badri aandhi raat mein dwar band sab kare, tab vajra shikha se tu hriday panjar chala aur jal akela re, o tu hriday panjar chala jal akela re. Yadi वो तुम्हें प्रकाश ना दे, यदि दिया बुझ जाए, अपने ही हृदय का दिया जला, अग्नि शिखा बन, और उस प्रकाश की लौ में, उस प्रकाश के उस दिए की प्रकाश में स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं चल, किसी का आधार, किसी का सहारा, किसी का सपोर्ट, किसी का अवलंबन न हो। और ऐसा व्यक्ति जो है वो इस संसार में बहुत शक्तिशाली होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, मुझे कितने लोग चाहिए? केवल 100. 100 सच एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म. मुझे केवल ऐसे 100 लोग चाहिए वो सामने खड़े हो जाए और कहे कि इस संसार में परमात्मा के सिवा और भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है. ऐसे 100 लोग, 100 सच कॉमा एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड. अगर मुझे ऐसे 100 लोग मिल जाए तो इस संसार को मैं परिवर्तन कर दूंगा. सिंसियर टू द बैकबोन, ऐसे ईमानदार, ऐसे वफादार जिनका एक ईश्वर के सिवा इस संसार में कोई नहीं है, ऐसा निश्चय जिनको है, ऐसे युवा, ऐसे कुमार, ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी मुझे चाहिए. तो ये जो मार्ग है परिवर्तन का, जितना हम इसमें अकेले चलते जाते हैं उतनी ही आत्मा में शक्ति भरती जाती है, और तब फिर उस एक की याद रहती है. यदि मनुष्यों की याद रहे तो उसकी याद नहीं रह सकती. आज की मुरली में वरदान है, यदि देह भी याद आए तो एक के पीछे एक सब कुछ याद आ जाएगा. इसके लिए निर्बंधन, कोई बंधन नहीं, ना तो व्यक्ति का, ना तो संबंध का, ना तो वस्तु का, ना तो वैभव का, ना तो किसी पदार्थ का, ना तो किसी स्थान का. सारे बंधन गिर जाए, सारे सपोर्ट गिर जाए. ऐसी जब अवस्था आती है और ऐसी चित्त की दशा में जो उसकी याद जब ठहरती है, वही सच्ची याद है. कि ऐसा लगे अब उसके सिवा और कोई सहारा नहीं है इस संसार में. पर क्या ऐसा निश्चय और ऐसा फेथ उसमें है? बाइबल में एक दृश्य दिखाया हुआ है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ जा रहा है गैलीली की झील. वो गैलीली की झील जिसमें वो उसके 12 शिष्य बैठे हैं और वो निकल पड़ रहे हैं यात्रा में. जीसस क्राइस्ट वहां सोया पड़ा हुआ है एक कोने में, और जैसे ही नाव आगे बढ़ती है तूफान आता है, एक जबरदस्त तूफान, एक ऐसी आंधी कि धीरे धीरे नैया हिलने लगती है, और फिर वो पानी जहाज में उतर जाता है. जहाज डूबने को है, सभी भयभीत भयाक्रांत. एक दूसरे को देख रहे जैसे अंतिम घड़ी सामने है, बस अब डूबी की डूबी जहाज. और वो देखते हैं कि ये व्यक्ति सोया पड़ा है, उसको उठाते हैं, मास्टर गेट अप. और दिखाया है जीसस क्राइस्ट खड़े होते हैं और आदेश देते हैं तूफान को, पीस बी स्टिल. और वो तूफान शांत हो जाता है, वो नाव स्थिर हो जाती है और फिर चलने लगती है. और वो तब अपने शिष्यों से एक बात कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, एक कम ईमान वालों, क्या भूल गए इस नाव में कौन सवार था? ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, क्या यही तुम्हारा ईमान है? जिस नाव में मैं सवार हूं वो कैसे डूब सकती है फिर भी इतने भयभीत? इस जीवन की नैया किसके हाथ में है? कौन चला रहा है इसे? फिर कैसा भय, फिर क्यों ये निश्चय डगमग? जब ऐसा विश्वास उसमें है तो फिर से हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, परिवर्तन. परिवर्तन का ये जो पथ है इसमें हम अकेले हैं. बार बार हम कह रहे हैं ये एकांगी पगडंडी है, शायद इस पगडंडी पे और कोई चला भी नहीं है. अनट्रॉडन पथ, उस पर हमें चलना है. कांटे बिछे हैं, शूल बिछे हैं, कोई साथी नहीं है, सब छोड़ चुके हैं, अब अकेले चलना है। रात अंधेरी है, जंगल घना है, अकेले चलना है। रास्ता डरावना है, अकेले चलना है। परंतु उसने कह दिया है कि मैं पग पग पर तुम्हारे साथ हूं। परिवर्तन, जैसे सुना कि हम किसी दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते, विश्व को नहीं कर सकते, ना तो समाज को, ना तो राष्ट्र को, ना दूसरे व्यक्ति को, ना परिवार को। सबसे पहले परिवर्तन हमें स्वयं को करना है। घर में दिया तो मस्जिद में दिया, हिंदी में कहावत है, घर में दिया तो मस्जिद में दिया। उसको बाबा इंग्लिश में क्या कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये इंग्लिश की कहावत है और वो हिंदी की कहावत। यदि यहां दिया है तो बाहर दिया है, यदि यहां ही बुझा हुआ है तो बाहर प्रकाश कैसे होगा। इस परिवर्तन के पथ में पहले तो ये सोचना है, परिवर्तन किस बात में करना है, किस में करेंगे परिवर्तन। आप सभी से प्रश्न है, परिवर्तन करना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन करना है, परंतु कौन सी बात में परिवर्तन करेंगे। कौन सी बात में करेंगे, बोलिए। देहभान से आत्माभिमानी, ये परिवर्तन, देहभान का परिवर्तन आत्माभिमान में। एक और, जो बुराइयां हैं उनको परिवर्तन करना, और अपने नहीं, परिवर्तन किन किन बातों में करना है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कहां करना है, बदलाव कहां लाना है, वृत्ति में बदलाव लाना है, सोच में बदलाव लाना है, और संस्कारों को परिवर्तन करना है, और संकल्प हो गया, विचार हो गया, सोच हो गया, थॉट्स हो गया, वृत्ति हो गया, संस्कार हो गया, स्वभाव हो गया, और एटीट्यूड हो गया। दृष्टि में परिवर्तन करना है, वाणी में परिवर्तन करना है, जैसी दृष्टि अब है दृष्टि में परिवर्तन हो जाए। स्मृति में परिवर्तन करना है, हमारी जो मेमोरी है, रिमेम्बरेंस है, उसमें परिवर्तन करना। और क्या कहा, दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है, पर्सपेक्टिव, जो दृष्टिकोण है, व्यू पॉइंट है, उसमें भी परिवर्तन करना है। और किसमें परिवर्तन करना है, हमारी आदतें, हमारी आदतें। आज की मुरली में महावाक्य है, आदत से मजबूर हूं, मुश्किल क्यों लगता है, बोझ बाप को दे दो, परंतु बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है। जब कारण पूछते हैं तो कहते हैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, क्या करूं, हिसाब किताब ऐसे है, क्या करूं, वातावरण ऐसा है, क्या करूं, हंस बगुलों का संग है। देखने का नजरिया, व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड, हैबिट्स, हॉबीज, लाइफस्टाइल, दिनचर्या, रात्रिचर्या, रूहचर्या, और क्या परिवर्तन करेंगे, भोजन में परिवर्तन। भोजन में परिवर्तन, हमारा भोजन सात्विक हो, सात्विक तो है ही, सुपर सात्विक होते जाए। और पीछे से होगा, और कल उसकी चर्चा की थी, कैसे भोग लगाया जाए, कैसे भोजन स्वीकार किया जाए, वो चार प्रकार की बातें बताई थी, चौका जिसको कहते हैं। और किसमें परिवर्तन करेंगे, स्वयं को, जीवन को देखो, सेवा में नवीनता लानी है, ये सेवा में परिवर्तन करना है। सेवा अभी जिस ढंग से करते हैं उसको और एक्यूरेट बनाना, उसको और पंक्चुअलिटी से करना, उसको और अच्छी तरीके से करना, और किस में परिवर्तन करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, वो दिनचर्या में आ गया, वो सारी धारणाएं आ गई, संबंध संपर्क, इसमें परिवर्तन करना है। व्यवहार जिसको कहते हैं ना, किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, किस तरह से संपर्क में आते हैं, संबंधों में आते हैं, कैसे नए संबंध बनाते हैं, इन सभी चीजों में परिवर्तन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द बेटर, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर द बेटर वर्ल्ड, बेटर के लिए, अच्छाई के लिए। जो है ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं है। किसी ने कहा है, वी डू नॉट प्रोग्रेस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, वी प्रोग्रेस फ्रॉम लेसर लाइट टू हायर लाइट। हम अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जा रहे, हम कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रकाश अभी नहीं है, प्रकाश इज देयर, लाइट तो है, परंतु मोर लाइट, बेटर लाइट, एक्स्ट्रा लाइट की आवश्यकता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, हर बात की अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो प्यूरिटी हो, चाहे वो दिव्य गुण हो, चाहे वो धारणाएं हो, चाहे सेवाएं हो, चाहे संबंध संपर्क हो, चाहे संकल्प हो, चाहे वाणी हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे वो इमोशंस हो और चाहे वो फैंटसी हो, कल्पना, भाव हो, भावना हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबका अधिक प्रकाश। तो इस परिवर्तन के लिए ऐसी 7 से 8 बातें हम आपको बताएंगे जो हर एक को करनी है। कुछ भी बदलना है तो, कोई भी चीज बदलनी हो, या तो ये कहो नई आदत डालनी है, पुरानी आदतों से मुक्ति और नई आदतें डालनी है। शायद कहीं ना कहीं हमारा मन रेजिस्ट करेगा, कहेगा नहीं, जो चल रहा है वही चलने दो। किसी को यदि उसकी दिनचर्या बदलने को कहो, ये सबसे बड़ा काम है, नहीं करता है व्यक्ति, सबसे पहले मानता नहीं है, रेजिस्ट करता है अंदर से। अवर माइंड टेंड्स टू सीक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ये मन का नियम है, जहां बिल्कुल कोई बाधा नहीं है वहां वो चलना चाहता है, जहां थोड़ी भी बाधा लगी वो उसे नहीं करना है। परंतु नया पथ, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा, गीत सुन रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम बढ़ना होगा, ए परम तपस्या के पथि को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। नया पथ, अभिनव मार्ग तैयार करना पड़ेगा, ऐसा न्यू नॉवेल पाथ हमें तैयार करना है। तो माइंड रेजिस्ट करता है, विरोध करता है, विद्रोह करता है अंदर ही अंदर, जैसे उसे कोई नई बात बताई जाए, उसे समझाना होगा। छोटा बच्चा है वो, मन को समझाया जाता है, अरे मन ऐसा कर, अरे मन तू ऐसा कर। तुलसीदास लिखता है, मैंने ये रामचरितमानस संसार के लिए नहीं लिखी है, मैंने अपने मन को समझाने के लिए, अरे मूर्ख मन कहां भाग रहा है विषयों के पीछे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, हे मूर्ख मन कहां विषय विकारों में फंस रहा है, कहां इन मोह के दलदल में डूब रहा है। स्वयं स्वयं के मन को सुनाया है, स्वयं स्वयं को ही के लिए गाया है, शांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए मैंने ये गाथा की है, संसार के लिए नहीं, अपने लिए। तो सबसे पहला काम कहां करना है, अपने ही मन के साथ, उसको समझाना है, वो छोटा बच्चा है। कहते हैं मन छोटा भाई है और बुद्धि बड़ा भाई, दोनों को समझाओ कि तू ये क्या कर रहा है, ये कहां जा रहा है। उसको अगर डांट डपट करोगे तो वो वहीं जाएगा जो उसको कहोगे नहीं। कल की क्लास में सुनाया था ना, सुबह की, दमन, विदेश में एक बहुत बड़ा फादर ऑफ साइकेट्री जिसे कहते हैं साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड, नाम सुना होगा, सिगमंड फ्राइड, जिसने सबसे पहली बार ये दमन का सिद्धांत, तो उसने कहा कि सारा संसार काम विकार से ग्रसित है और यही एकमात्र बात है हर एक व्यक्ति में, और उसके सिद्धांत के बाद ही विश्व भर में इतना काम विकार फैल गया। उसने कहा था कि दमन नहीं करो, पर उसने ये नहीं कहा था करना क्या है। तो सबने, सारे देशों ने उसके इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। जो आज 100 साल में इतना काम विकार बढ़ा हुआ है वो फ्राइड के सिद्धांत के बाद ही, उसके पहले इतना नहीं था। उसकी ये जो खोज थी कि जितने विकार, जितनी शारीरिक व्याधियां होती है, इस काम विकार के दमन से हुई है। परंतु उसके पास वो भारत का नहीं था, उसके पास वो ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था। उसका तो एक साइंटिफिक बेसिस पे उसने बहुत सारी खोज की जीवन भर, और अपने सिद्धांत प्रतिपादन किए, और सारे देशों ने उसको ऐसे स्वीकार कर लिए, और उसके बाद में फिल्में बनी और उपन्यास बने, और आज जो संसार है वहीं से सब कुछ हुआ सिगमंड फ्राइड के बाद। जबकि उसके जो शिष्य थे सिगमंड फ्राइड के, उन्होंने भी उसका विरोध किया बाद में, जो उसी के शिष्य थे, कार्ल जंग और एक दूसरा शिष्य। तो उसके जीवन में एक उल्लेख है कि वो कभी अपनी पत्नी के साथ किसी बगीचे में गया, और जब शाम हो गई और जाने का समय हुआ तो उनका जो छोटा बच्चा था वो दिख नहीं रहा था। उसे बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। सिगमंड फ्राइड ने अपने पत्नी से कहा कि तुमने उसे कहीं जाने के लिए मना किया था? उसकी पत्नी ने कहा हां, उसको कहा था उस फव्वारे के पास नहीं जाना। तो उसने कहा वहीं पे होगा, जाओ उसको ढूंढो। पूरा बगीचा ढूंढने के बाद देखते हैं वो बच्चा जो है उस फव्वारे के वहां बैठा है, पानी से खेल रहा है पैर नीचे डालकर। उसकी पत्नी उससे पूछती है, ये तुमने कैसे पता कर लिया कि वो वहां है? वो कहते हैं, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है, जान कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं, ये तो सारी मनुष्य जाति के साथ हो रहा है। जो उसे मना किया जाता है वही वो करता है। कल भी कहा था, व्हाइट बेयर फिनोमिनन, आयरनिक प्रोसेस थियरी, इंग्लिश में इसको कहते हैं आयरनिक प्रोसेस थियरी। जो मना करो वही करेगा। व्हाइट बेयर फिनोमिना कल भी बताया था, बोला कि सफेद भालू के बारे में नहीं सोचो तो वही सोचते रहता है। वैसे ही मन जो है, अगर जबरदस्ती करो, उसको कहो ये नहीं वो नहीं, तो उत्कंठा उत्पन्न होती है, क्यों नहीं, क्या है जरा देखो। तो जैसा एक साधु था, हमेशा अपने प्रवचनों में कहता था, बचपन से संन्यास ले लिया कि टीवी नहीं देखनी चाहिए, सिनेमा नहीं देखना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, काम महाशत्रु है। परंतु जितने लोग उसे सुनने आते थे सब टीवी देखते थे और सब सिनेमा भी देखने जाते थे। उसके हृदय में भी यह इच्छा दबी हुई थी, आखिर है क्या इतना सिनेमा में, मैं इतना कहता हूं मत देखो, फिर भी लोग जा जाके देखते हैं। पर कहे भी किससे, उसकी साधुता का प्रश्न था, कलंक लग जाएंगे उसकी संतत्व पर। किसी व्यक्ति से कहता है कि क्या मुझे तुम सिनेमा दिखा सकते हो, उसके एक भक्त से, यह दमन है। क्योंकि क्यों देखना है, क्योंकि जितना मैं कहता हूं जोर से उतना ज्यादा लोग जा जाके देखते हैं, कुछ तो होगा। वो उसको कहते हैं कि यहां तो नहीं दिखा सकते, बाहर दिखा सकते हैं। वो कहता है चलेंगे चुपके से अंधेरे में जाके बैठ के मैं देखूंगा, पर मुझे एक बार तो दिखा दो क्या है। ये जो चीज है दमन, इसके लिए मन जो है छोटा सा बच्चा है, उसको समझाना होता है, उसको बताना होता है ये ऐसा ऐसा है, इसके लिए तुम्हें नहीं करना है। या फिर उसे, एक छोटा बच्चा है उसको हम दो लड्डू देते, एक छोटा लड्डू एक बड़ा लड्डू, कौन सा लेगा? बड़ा ले लेगा। तो क्या ये कहेंगे कि छोटे का उसने त्याग कर दिया, वहां पर ही छूट गया, बड़ा मिल गया ना? तो जब भगवान मिल जाता है तो संसार रूपी छोटा लड्डू सतही, अगर उसे भगवान भी ना दो और केवल इसको कहो छोड़ो इसको, तो छोड़ेगा नहीं। अगर एक आदत हम में लगी हुई है, हम कहे उसको ये छोड़ दो आदत, कैसे छोड़ेगा वो? उसको नई आदत डालनी पड़ेगी। न्यू न्यूरल पाथवेस, नव पथ, नूतन पथ रचना होगा। उसे कुछ तो नया देना पड़ेगा, बड़ा देना पड़ेगा, ताकि वो छोटा हो जाए और वो स्वतः ही छोड़ दे फिर उस छोटे को। तो इस परिवर्तन की ऐसी 7 बातें हम आपको बताएंगे। सबसे पहली, हमें कुछ भी परिवर्तन करना है, चाहे आदत, चाहे वृत्ति, चाहे दृष्टि, चाहे स्वभाव, चाहे संस्कार, चाहे संबंध, चाहे संस्कार, कुछ भी, सबसे पहला है रिकॉग्निशन। जानो कि ये मुझे परिवर्तन करना है, ये बात है जहां परिवर्तन लाना है, यहां मैं फंसा हुआ हूं। जब तक हम ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसकी हमें पहचान नहीं होगी, हम क्या परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले तो रिकॉग्निशन कि ये वो पॉइंट है, मेरे संबंध संपर्क ठीक नहीं है, मुझे ये ठीक करना है, मेरी दृष्टि ठीक नहीं है, मुझे दृष्टि ठीक करनी है, मेरे भोजन खाने की विधि ठीक नहीं है, वो मुझे ठीक करना है, मेरे चलने की जो क्रिया है वो ठीक नहीं है, वो मुझे ठीक करनी है, चाल चलन ठीक नहीं है, बोल ठीक नहीं है, वृत्ति ठीक नहीं है, कहां मुझे परिवर्तन करना है, पहले तो वो रिकॉग्नाइज करना, पिन पॉइंट करना कि ये वो पॉइंट है। अगर जीवन की जो दिनचर्या है इसमें 10 बातें हैं, इस 10 बातों में से ये बात है जहां मेरा टाइम वेस्ट होता है। आज की मुरली में कहा है समय और संकल्प, 2 खजाने, 5 खजाने गिनाए हैं, उसमें से 2 का विस्तार किया है बाबा ने, संकल्प का और समय का। थोड़ा थोड़ा नहीं करो, थोड़ा ही संकल्प चला, थोड़ा ही चल होता है, थोड़े समय के बाद ठीक हो जाएगा। जगदीश भाई लिखते ये थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लग जाएगा। तो कहां पिन पॉइंट द वीकनेस, पिन पॉइंट द इम्परफेक्शन, पिन पॉइंट रिकॉग्नाइज कहां परिवर्तन करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो कि मुझ में ये कमी है। मन स्वीकार कहां करता है, अगर कोई दूसरा कह दे कि तुम ये ठीक से नहीं करते हो कितना बुरा लगता है। कोई अगर कहे कि तुम्हें अमृत वेला बहुत नींद आती है तो गुस्सा आएगा ना, थोड़ा तो आएगा ही। कोई कहेंगे कि तुम्हारा योग इतना शक्तिशाली नहीं, अभी उसको तुमको कैसे पता हमारा योग शक्तिशाली है या नहीं, पहला तो ये प्रश्न उठेगा, वो बाद में है या नहीं है वो दूसरी बात है, तुम्हें किसने बताया, पहले तो क्रोध। कोई अगर आके कहते तुम्हारी पवित्रता ठीक नहीं है तो स्वीकार कर लेंगे, बहुत अच्छा थैंक यू, हम कहेंगे तुम्हें क्या पता, तुम अपना देखो पहले। सेकंड स्टेज है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि यहां यहां मुझे बदलना है। पहला रिकॉग्नाइज किया, फिर एक्सेप्ट किया। थर्ड स्टेज संकल्प करना, क्या करेंगे थर्ड स्टेज में, संकल्प करना कि ये चीज मुझे बदलना है, और संकल्प भी दृढ़ता के साथ, विथ डिटर्मिनेशन, रिजॉल्व विथ डिटर्मिनेशन कि ये चीज है जो मुझे संकल्प, ऐसा संकल्प करना। इस संकल्प करने में बहुत बल है, महाभारत में देखेंगे जहां तहां हर एक संकल्प ही संकल्प करते रहता है, कोई संकल्प कर रहा है जयद्रथ को मार दूंगा, कोई संकल्प करता है कि इसके छाती का लहू पी लूंगा, कोई कहता है आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, कोई कहता है इसके 10 अपराध के बाद मैं क्षमा नहीं करूंगा, उसके बाद में मार दूंगा 100 अपराध के बाद, हर जगह दिखाए है इस तरह संकल्प ही संकल्प है। संकल्प में बल होता है, प्रतिज्ञा, वाउ, ओथ, प्रण, व्रत, इसमें एक अद्भुत सा बल होता है। हम अगर व्रत ले ले, कोई माता कोई व्रत ले ले, कुछ भी हो जाए छोड़ती है क्या, बीमार भी हो जाए तो भी खाना नहीं खाएगी, जो व्रत लिया है उसको पूरा ही करेगी। तीर्थ यात्रा पर कितनी दूर दूर जाते हैं, व्रत होता है, उस व्रत में शक्ति होती है, संकल्प में बहुत शक्ति है। हमें याद है हमारे मेडिकल कॉलेज में हमारे जो प्रोफेसर थे, डीन जो थे वहां के नागपुर मेडिकल कॉलेज के, डॉक्टर आईचीत, बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने जीवन का अनुभव सुनाया था। जब जीएमसी नागपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में उन्होंने एडमिशन ली थी एज अ फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट 60s में, तब संकल्प किया था कि एक दिन जिस मेडिकल कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूं उसी मेडिकल कॉलेज का डीन बनूंगा। कितना ऊंचा संकल्प है, फर्स्ट ईयर में जहां रैगिंग का डर है, डर डर के वहां पे स्टूडेंट्स जाते हैं कॉलेज में, उस छोटी उम्र में 17-18 साल की उम्र में कौन सा संकल्प लिया? अभी तो एमबीबीएस ही नहीं हुआ, एमबीबीएस पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद में कितनी सारी एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एक्सपीरियंस, एचओडी, और एचओडी कितने समय के बाद फिर जाके डीन। इस उम्र में संकल्प किया कि इस मेडिकल कॉलेज का मैं डीन बनूंगा, और बन गए एक दिन। कैसी पावर है संकल्प में। थर्ड स्टेज संकल्प, फोर्थ विजुअलाइजेशन। कल शाम को भी विजुअलाइजेशन की हमने कुछ बातें कही थी। देखना अपने आप को मैं बन चुका हूं। हमें याद है, हम जब मेडिकल कॉलेज में थे फर्स्ट एमबीबीएस में, हमारा जो हॉस्टल था उसमें हॉस्टल का जो दरवाजा था, हर एक का कमरा अलग अलग होते थे। तो जो अभी फर्स्ट एमबीबीएस में, हमारे दोस्त लोग क्या लिखते थे, डॉक्टर अनिल एमबीबीएस, एमडी, एफआरसीएस, एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ दिस, मतलब अभी कुछ हुए नहीं है पर ये सारी डिग्रियां लगा के रखते थे, ऐसी मजाक में या खेल खेल में। कोई लिखता था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ थेल्मोलॉजी, कोई लिखता था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जरी, ऐसे हंसी मजाक में। अभी तो कहा फर्स्ट एमबीबीएस में, अभी तो कुछ भी नहीं हुए, 3-4 डिग्रियां लगा के रखते थे। पर हम अब देखते हैं इतने सालों के बाद, जिसने जो लिखा था वो बन चुका है हर जगह पर। जो जो जिसने लिखा था, हंसी मजाक में लिखा था, खेल खेल में लिखा था, कोई देखने वाला थोड़ी होता है हॉस्टल में, अपना राज होता है उधर तो। परंतु जिसने जो जो लिखा था वो बन गया या उससे ज्यादा बन गया। विजुअलाइजेशन, एक विजन, एक क्रिएट करते हैं विजन, उससे वो बन जाता है विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप रिपीटिशन। जो संकल्प किया और जो विजन क्रिएट की उसको बार बार देखना मन की आंखों से कि हम बन चुके हैं, हम बन चुके हैं, हम ऐसे हैं और हम बन चुके हैं। विजन क्रिएट करना, संकल्प करना, उसको दृढ़ता लाना, उसका विजन क्रिएट करना और फिर उसको देखना और उसको बार 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 पुनरावृत्त करना। ये पुनरुक्ति जो है उसमें रंग भरना, विजुलाइज करना, पिक्चराइज करना, कलराइज करना। जो विजन हम क्रिएट करें उसको देखना, लाइव देखना, 3D में देखना, उसमें रंग भरना, उसको कलर भरना, उसमें चलते हुए देखना कि मैं ये हूं और बन गया हूं। इसके लिए बाबा ने क्या बताया है, फरिश्ता बनने की विधि क्या है, मैं फरिश्ता बनूंगा नहीं, मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता बनने की विधि क्या है, मैं फरिश्ता हूं, बनूंगा नहीं, हूं। यह है विजन। नेक्स्ट स्टेप प्लान। कितने हो गए, 6वां। 8 स्टेप्स है प्लान बनाना, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता है। हम सोचे हमें अमृत वेला उठना है और प्लानिंग ना बनाए कुछ नहीं होगा। हम सोचे हमें अमृत वेला बहुत शक्तिशाली बनाना है, प्लानिंग ना करें कुछ नहीं। हम सोचे हमें मुरली ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, प्लानिंग ना बनाए कुछ नहीं होगा। हम सोचे कि हम ड्यूटी पे जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, वहां बाबा की याद करें और प्लानिंग ही नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। प्लानिंग चाहिए हर चीज की, छोटी छोटी चीज की भी प्लानिंग चाहिए, तैयारी चाहिए। मार्क ट्वेन एक ऑथर हुआ है विदेश में, उसने लिखा है, इफ आई हैव टू प्रिपेयर अ स्पीच, यदि मुझे आई हैव टू गिव अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, इम्प्रोम्प्टो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यदि मुझे बिना तैयारी के कहीं अचानक भाषण देना पड़ा, आई नीड एटलीस्ट 3 weeks टू प्रिपेयर, मुझे कम से कम 3 हफ्ता चाहिए। कौन सा भाषण देने के लिए, बिना तैयारी वाला भाषण देने के लिए। ये वाक्य थोड़ा सा जिसको कहते हैं आयरनी, जिसको कहते हैं पैराडॉक्स, विरोधाभासी वाक्य है, बिना तैयारी का भाषण देने के लिए मुझे 3 हफ्ता चाहिए, ऐसा उसने लिखा है। एक्सटेम्पोर स्पीच। तो कोई भी चीज बिना तैयारी के नहीं हो, द तैयारी चाहिए, प्लानिंग चाहिए हर चीज की। आज की मुरली में संकल्प और कर्म, प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन, आज की मुरली में एक जगह आया है अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 1999। कर्म और संकल्प और कर्म, प्लान और एक्शन, इसकी अच्छी प्लानिंग चाहिए, कोई भी चीज की प्लानिंग। नेक्स्ट स्टेप इंप्लीमेंटेशन, प्लान बनाया, अब उसको एक्शन में लाओ, अब उसको व्यवहार में लाओ, अब उसको कर्म में लाओ, और फिर कर्म में लाने के बाद लास्ट 8 स्टेप है चेकिंग, एनालिसिस। जो संकल्प हमने किया था, फिर जो विजुअलाइज किया था, फिर जो रिपीट किया था, फिर जिसकी प्लानिंग बनाई थी और जिसको इंप्लीमेंट किया, ये सारी स्टेजेस में कहां मिस्टेक हुई, कहां गलती हुई, कितनी सफलता मिली, कितनी सफलता नहीं मिली, क्या कारण रहे असफलता के, अगर असफल होते हैं तो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। मिलते ना सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार पिसरती। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डुबकिया सिंधु में गोताखोर जाकर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चेक करना है, स्वयं को देखना है। तो ये परिवर्तन की ऐसी 8 स्टेप सी, कौन कौन सी आप सब बताएंगे। फर्स्ट स्टेप रिकॉग्नाइज करना है, सेकंड स्टेप एक्सेप्ट करना है कि मेरे में ये गलती है, ये कमी है, ये इम्परफेक्शन है, ये फ्लॉ है, ये खामी है। थर्ड स्टेप संकल्प करना है, कैसा संकल्प करेंगे, दृढ़ संकल्प करना है, प्रतिज्ञा करनी है, जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए फिर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नेक्स्ट स्टेप विजुलाइज करना है, मन की आंखों से देखना है। नेक्स्ट स्टेप रिपीट करना है उसे बार 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 बार, पुनरुक्ति। नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग करनी है, अच्छी प्लानिंग करनी है कोई भी चीज की। नेक्स्ट स्टेप इंप्लीमेंटेशन, ये 7 स्टेज यहां पूरी होने के बाद जब कर्म पूरा हो जाता है तब उसकी चेकिंग और उसकी एनालिसिस, और फिर वापस नया रिकॉग्निशन। ये 8 स्टेज पूरी हुई, जब पूरी होती है तो फिर से स्टेज फर्स्ट में आ जाओ, फिर से रिकॉग्नाइज करो कहां गलती हुई और उसको पिन पॉइंट करो ये है, फिर उसको एक्सेप्ट करो, फिर संकल्प, फिर विजुअलाइज, फिर रिपीट, फिर प्लान, फिर इंप्लीमेंटेशन। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओम शांति।
हम जाने प्रभु या तुम जाने।